नमस्कार, आज हम एक बहुत ही प्रेरक प्रवचन पर बात कर रहे हैं। ये प्रवचन है युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का।
हाँ, और हमारे पास उनके दिए गए व्याख्यान का प्रतिलेख है और कुछ लिखित अंश भी हैं, तो गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, और देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो केंद्र बिंदु है, वो है ज्ञान को सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित न रखना।
हाँ।
बल्कि उसे जीवन में उतारना। प्रवचन में एक वाक्य पर बहुत जोर है, करिष्ये वचनम तव।
करिष्ये वचनम तव मतलब मैं आपके वचन का पालन करूंगा।
हाँ, सिर्फ सुनूंगा नहीं।
बिल्कुल, और यही आचार्य जी का मुख्य संदेश लगता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव के लिए वो क्या कहते हैं, सिर्फ निष्क्रिय होकर सुनना काफी नहीं है।
सही,
सक्रिय कर्म करना होगा। इस पर वो क्यों इतना जोर दे रहे हैं, यही आज देखना है।
अच्छा, तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? मुझे याद है उन्होंने दुनिया की विशाल समस्याओं का जिक्र किया था।
हाँ, शुरुआत वहीं से की कि देखो, दुनिया में 500 करोड़ लोग हैं, उनकी कितनी जटिल, कितनी सारी समस्याएं हैं, और ये सिर्फ बाहरी तौर पर मतलब स्थूल शरीर से इनको न समझा जा सकता है, न सुलझाया जा सकता है। तो वो शायद सूक्ष्म शरीर की शक्ति की तरफ इशारा कर रहे थे।
बिल्कुल,
उनका मानना था जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है तो सब तरफ फैल जाती है ना, वैसे ही सूक्ष्म शरीर मतलब हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो ज्यादा व्यापक असर डाल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये असर आएगा कैसे?
हाँ, कैसे?
यहीं पर कर्म का महत्व आता है। वो साफ कहते हैं कि सिर्फ सुनने से, सालों साल कथा भागवत सुनने से कुछ नहीं होता। लोग सुनते सुनते बूढ़े हो जाते हैं, पर जीवन वैसे का वैसा।
सही बात है, बदलाव नहीं आता
क्योंकि उसे अपनाया नहीं। इसीलिए वो अर्जुन वाला उदाहरण देते हैं। कृष्ण से अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव। ये सिर्फ सुनना नहीं था, ये आज्ञा पालन का, कर्म करने का एक पक्का संकल्प था।
ठीक है, तो कर्म तो जरूरी है, लेकिन ये जो ज्ञान है, इसे ग्रहण करने की, इसे कर्म में बदलने की क्षमता, वो योग्यता कैसे आए?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर आचार्य जी पात्रता की बात करते हैं, पात्रता का विकास।
पात्रता मतलब?
हाँ, मतलब ग्रहण करने की क्षमता। इसे उन्होंने बहुत ही सरल उदाहरण से समझाया, तालाब का उदाहरण दिया।
अच्छा, तालाब वाला। हाँ, याद आया।
हाँ, कि देखो, बादल तो सब जगह बरसते हैं, मैदान पर भी, पहाड़ पर भी, गड्ढे में भी, पर पानी टिकता कहाँ है?
जहाँ गहराई हो, गड्ढे में, तालाब। हाँ, में।
बिल्कुल, क्योंकि तालाब ने अपनी पात्रता विकसित की है, उसने गहराई बनाई है। तो हमें भी अगर ज्ञान चाहिए, कृपा चाहिए, तो अपनी पात्रता, अपनी अंदरूनी गहराई बढ़ानी होगी।
ये बात तो बहुत दिलचस्प है। तो ये पात्रता बढ़ेगी कैसे, इसका कोई तरीका बताया उन्होंने?
हाँ हाँ, बताया। दो मुख्य चीजें बताई। पहली, श्रम।
श्रम मतलब?
हाँ,
मेहनत।
हाँ, अपना थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा समय लगाना। और दूसरी चीज, साधन।
साधन यानी पैसा, संसाधन।
हाँ, अपने संसाधन, अपनी रोटी, कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा। मतलब सीधी सी बात है, जो समय और साधन हम सिर्फ अपने लिए लगाते हैं ना, उसका एक छोटा सा अंश, एक हिस्सा परमार्थ के लिए, समाज के लिए, एक बड़े मिशन के लिए देना।
अच्छा, और इसको उन्होंने वो बोने और काटने वाले सिद्धांत से भी जोड़ा था, है ना?
सटीक, बिल्कुल जोड़ा था। जैसे किसान थोड़ा सा बीज बोता है। हाँ। लेकिन फसल कई गुना होके मिलती है।
हाँ।
वैसे ही परमार्थ में, अच्छे काम में लगाया गया हमारा थोड़ा सा श्रम, थोड़ा समय, थोड़ी बुद्धि या थोड़ा पैसा, वो कभी बेकार नहीं जाता, वो कई गुना होके लौटता है।
किस रूप में लौटता है?
आत्मिक संतोष के रूप में, पुण्य के रूप में।
और उन्होंने तो खुद अपना जीवन सामने रखा, बताया कि कैसे अपने गुरु, जिन्हें वो मजाक में बॉस कहते थे, उनके निर्देशों का पूरी तरह पालन करके, अपना समय, अपनी जवानी, अपना सब कुछ लगाकर, वो कितने बड़े बड़े काम कर पाए। वो कहते थे, मैं तो निहाल हो गया, जैसे कोई भूखा है तो खाना दे दिया।
नहीं नहीं, वो तो एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, पर असली अंतिम लक्ष्य जो था वो बहुत गहरा था। विचार क्रांति।
विचार क्रांति
मतलब लोगों के सोचने का तरीका बदलना। आचार्य जी का ये पक्का मानना था कि दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनकी जड़ इंसान के गिरे हुए स्वार्थी विचार हैं।
अच्छा,
इसीलिए वो कहते थे, सिर्फ पैसा बांटने से या अस्पताल, धर्मशाला खोलने से स्थायी समाधान नहीं होगा, वो तो सिर्फ पैबंद लगाना है। असली समाधान है लोगों को ज्ञान देना, समझ देना, ताकि उनकी सोच बदले, उनके विचार ऊंचे उठें। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना, नारद जी ने डाकू रत्नाकर को क्या दिया? पैसा नहीं, ज्ञान दिया, और वो डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन गए।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन था।
बिल्कुल, और इसी वजह से शायद वो उन धार्मिक कामों की भी आलोचना करते थे जो सिर्फ सतही हों या स्वार्थ से भरे हों।
जैसे?
जैसे कोई सोचे कि मैं यहाँ मंदिर बनवा दूंगा तो भगवान खुश होकर मुझे मरने के बाद स्वर्ग में बढ़िया सा फ्लैट दे देगा।
हाँ हाँ।
वो इसे चालाकी कहते थे।
हाँ।
उनके लिए असली अध्यात्म था अपने चरित्र को सुधारना और समाज के लिए बिना किसी स्वार्थ के योगदान देना। इसीलिए उनका जोर ज्ञान मंदिर बनाने पर था।
ज्ञान मंदिर, मूर्तियों वाले मंदिर नहीं।
वो कहते थे ये मूर्तियों वाले तो खिलौने मंदिर हैं, असली जरूरत है ज्ञान मंदिर की। ऐसी जगहें, ऐसे केंद्र जहाँ से सही समझ फैले, चरित्र निर्माण का ज्ञान मिले, विचार बदले।
और शायद इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि आपकी वाणी में, आपकी बात में असर तभी आता है जब आप खुद उन सिद्धांतों पर चल रहे हो।
निश्चित रूप से, कहते थे जिसका अपना जीवन ही ठीक नहीं है, जो खुद ही सिद्धांतों पर नहीं चलता, उसकी बातों का दूसरों पर क्या असर होगा, कोई नहीं सुनेगा। लोग सुनते उसी की हैं जिसके कर्म और वचन में एकता हो, जिसका अपना जीवन एक मिसाल हो।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो सार यही निकलता है कि सिर्फ सुनने या पढ़ने से काम नहीं चलेगा।
बिल्कुल नहीं,
हमें वो करिष्य वचनम तव वाली भावना लानी होगी, कर्म का संकल्प लेना होगा।
हाँ।
और उसके लिए अपनी पात्रता बनानी होगी, मतलब अपना थोड़ा समय, थोड़ा साधन निस्वार्थ भाव से अच्छे विचारों को फैलाने में, समाज की भलाई में लगाना होगा।
बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं।
हाँ जरूर।
कि इस प्रवचन से प्रेरणा लेकर ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा लेकिन नियमित कदम हो सकता है जिसे हम अपने रोज के जीवन में शामिल कर सकें, जिससे ये पात्रता बढ़ाने की यात्रा शुरू हो सके।